الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل صد احترام سجادہ نشین درگاہ عالیہ اشرفیہ حضرت ڈاکٹر فخر المشائی سید محمد اشرف اشرف الجیلانی محبوب المشائخ سید محبوب اشرف اشرف الجیلانی اور میرے دیگر برادران، ان کی یہ شفقت اور محبت ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے میرا بولنا مناسب نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ہوتے ہوئے میں اپنے بات آپ تک پہنچاؤں، لیکن آپ کا حکم ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور میری خوش نصیبی ہے کہ کافی عرصے کے بعد میں دادا حضور کے اس عرس میں شریک ہوں، اور یہ انہی کا بلاوا ہے کہ جو پروگرام کئی دنوں سے ہم بنا رہے تھے عرس کے موقع پر ہمیں حاضری کا موقع ملا. میرے بزرگوں اور دوستوں، درگاہ عالیہ اشرفیہ پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کا سب سے بڑا مرکز، اور یہ قطب ربانی حضور سید طاہر اشرف اشرف الجیلانی کے وصال کے بعد یہاں قائم ہوا. آپ کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار کی کثرت نظر آتی ہے. آپ نے 12 سال کشمیر کی پہاڑیوں میں چلہ کشی کری، دنیا سے دور رہ کر اللہ کی معرفت حاصل کری، اور پھر واپس اس دنیا میں تشریف لائے اور مسلمانوں کی اصلاح فرمائی اور ہزاروں غیر مسلموں کو مسلمان کیا. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جن سچوں کا ذکر ہو رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دامن سے وابستہ ہونے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. علماء اکرام سے آپ حضرت قطب ربانی کی کرامات سنتے رہتے ہیں. حضرت فخر المشائخ ہر عرس میں آپ کے کرامات بیان کرتے ہیں. میں ایک کرامت بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت قطب ربانی نے 2 سال پہلے اپنے وصال سے بتا دیا کہ 2 سال کے بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. میں اور آپ نہیں جانتے کہ ہماری کتنی زندگی ہے، ہم کب تک زندہ رہیں گے، ہمیں کل کی پتہ نہیں. جب یہ بزرگان دین عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، رب العالمین سے قریب ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راز ان پر افشاں فرما دیتا ہے، پھر یہ اللہ کے رازدار بن جاتے ہیں. حضرت اشرف المشائخ والد محترم فرماتے تھے کہ آپ نے مریدین کی محفل میں فرمایا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست دی ہے، اور وہ درخواست اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ سے پوچھتے کہ کیا درخواست دی ہے. آپ کے جلال سے سب واقف تھے، سب خاموش رہے. کچھ عرصے کے بعد آپ نے فرمایا، ہم نے جو درخواست اللہ کی بارگاہ میں دی تھی وہ منظور ہو گئی. رب العالمین کے یہ پاک بندے یہ اپنے رب پر فخر کرتے ہیں، رب العالمین ان پر فخر فرماتا ہے، انہیں اللہ پر ناز ہوتا ہے. جب عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، رب العالمین کی فرما برداری کی حد کر دیتے ہیں، تو انہیں بھی معلوم ہوتا ہے جو ہم اپنے رب سے عرض کریں گے وہ اسے منظور فرمائے گا. فرماتے ہیں، ہم نے جو درخواست دی وہ منظور ہو گئی. کیا درخواست دی؟ کہا، ہم نے درخواست دی تھی کہ ہم قبرستان میں دفن نہیں ہوں گے، ہمارے لیے کوئی اعزازی جگہ ہونی چاہیے، اور وہ درخواست منظور ہو گئی. اب جگہیں دیکھو، हम देखेंगे हमारी जगह कौन सी है। मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी आपको लाकर दी गई, आप मिट्टी सूंघते फरमाते ये हमारी मिट्टी में नहीं मिलती, मैं और आप नहीं जानते हम कहाँ दफन होंगे, हमारी मिट्टी कहाँ से उठाई गई। खुदबरबानी फरमाते हैं ये मेरी मिट्टी में नहीं मिलती। इस मकाम की मिट्टी जब आपकी बारगाह में लाई गई, आपने उसको सूंघा, फरमाया ये मिट्टी हमारी मिट्टी में मिलती है। फरमाया कि हमें हम जाकर देखेंगे। हजरत अशरफ नौशाई वालिद मुहतरम फरमाते हैं कि हम उनको इस जगह लेकर आए, जंगल बियाबान था, अजीब कैफियत थी, बबूल के दरख्त, कांटेदार झाड़ियाँ, यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल था। आपको साइकिल रिक्शा में सवार करके इस मकाम तक लाया गया, रास्ते में झाड़ियाँ काटी गईं। इस मकाम पर आप तशरीफ़ फरमा हुए, जहाँ पर आपका मज़ार मुबारक है यहाँ पर आप टहलते रहे, पढ़ते रहे। वरिद मोहतरम फरमाते हैं मैं अपने भाई के साथ दूर खड़ा हुआ था, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि हजरत तो बड़े नफीस तबीयत के हैं, ये तो बड़ी अजीब जगह है, अब ये फरमाएंगे कि नहीं ये हमारे मदफन नहीं बनेगा। हम अभी आपस में ये गुफ्तगू फरमा रहे थे, वो दूर टहल रहे थे उसी मकाम पर जहाँ पर आज मज़ार मुबारक है। मुड़कर फरमाया क्या समझते हो ये जगह ऐसी ही रहेगी, जब हम यहाँ आ जाएंगे ये जगह गुले गुलजार बन जाएगी, यहाँ पर लोग आकर सुकून महसूस करेंगे, यहाँ पर एक मदरसा होगा, एक मस्जिद होगी, एक महफिल खाना होगा, जो हजरत कुतुब रब्बानी ने नक्शा पेश किया था आज वो नक्शा आपके सामने मौजूद है। यह अल्लाह के बरगुजीदा बंदों की शान है कि जो इनके मुंह से निकल जाए रब्बुल आलमीन उसको पूरा फरमा देता है। एक मदरसा होगा, मस्जिद होगी, महफिल खाना होगा। हजरत अशरफ मशाइख ने अपनी पूरी जिंदगी इसी ख्वाब को पूरे करते हुए गुजार दी। इस मरकज को पूरी दुनिया के अंदर मशहूर फरमा दिया और यहाँ पर कुतुब रब्बानी के कहे के मुताबिक मदरसा भी कायम किया, मस्जिद भी कायम की, महफिल खाना भी कायम किया। यहाँ रातों को लोग जागते हैं। अशरफ हजरत कुतुब रब्बानी ने फरमाया था लोग आएंगे यहाँ सुकून महसूस करेंगे। आज लोग यहाँ रात गुजारते हैं, शब मेराज हो, शब बरात हो, नौचंद जुमरात हो, सारी रात यहाँ रज्जगा होता है, लोग आकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। ये कुतुब रब्बानी का फैजान है। ये वो बुजुर्गान दीन है कि जो अपनी नज़रों से लोगों के दिल की दुनिया को बदल देते हैं। जब आपका विसाल का वक्त करीब आया, वालिद मोहतरम फरमाते हैं जब कोई आपकी खैरियत को पूछने के लिए आता और हुजरे में दाखिल होता उसकी जबान बंद हो जाती, कल्ब जारी हो जाता, जिक्र में मसरूफ हो जाता, वो जितनी देर आपके हुजरे में रहता उसका कल्ब जिक्रुल्लाह में मसरूफ रहता, जब वो बाहर आता तो हमसे पूछता कि हजरत की तबीयत कैसी है। ये आपके रूहानियत की दलील है कि जो आपके करीब हो जाता वो अल्लाह से करीब हो जाता, जो आपसे दूर हो जाता वो अल्लाह से दूर हो जाता। आज हम उनकी निस्बत रखते हैं, उनके दामन से वाबस्ता हैं, हम उनसे करीब हैं, यकीनन हम अल्लाह से भी करीब होंगे। ये इन बुजुर्गान दीन की शान है। जब आपका विसाल हुआ, हजरत अशरफ मशाइख वालिद मुहतरम फरमाते हैं जब हमने आपको कब्र में उतारा और सिरे में रखनी शुरू करी तो एक मजजूब जाहिर हुए। बुजुर्गान दीन औलिया कामरीन जिंदगी में अपने मकाम और मर्तबे को नहीं बताते कि वो रूहानियत में क्या मकाम रखते हैं, जो उनको अल्लाह तबारक बताला मकाम अता फरमाता है उसको छुपाते हैं। कुतुब रब्बानी ने भी नहीं बताया कि मैं किस मकाम में रूहानियत पर हूँ। फरमाते हैं अजरबुल मशाई कि जब विसाल हुआ, आपको कब्र में उतारा गया, सलेबे रखी जा रही थी, उसी वक्त एक मजजूब जाहिर हुए और आकर कहते हैं कि मुझे इनका चेहरा दिखाओ, बाल गिर से अटे हुए हैं, अजीब कैफियत है, रो रहे हैं, जारों कतार आंसू बह रहे हैं, अजीब कैफियत है। फरमाते हैं हमने उलमा की तरफ देखा, उन्होंने कहा दिखा दीजिए। फिर हजरत कुतुब रब्बानी के चेहरे से कपड़ा हटाया गया, वो मजजूब कब्र के किनारे पर हाथ रखकर झुके हुए कुतुब रब्बानी के चेहरे को देखते रहे, जो नूरे विलायत से चमक रहा था, रोते रहे। उसके बाद फरमाते हैं तुम्हें मालूम है दुनिया से कौन चला गया, आज एक दुनिया से कुतुब उड़ गया है। खुद भी दुनिया से चला गया है, रोते रहे, आंसू बहाते रहे। फरमाते हैं फिर वो पीछे हटे, हमने सिरे पे रखी और चाहा कि उनसे मुलाकात करें, पीछे मुड़ के देखा तो वो मौजूद नहीं थे। इसीलिए आज हम और आप उन्हें कुतुब रब्बानी के नाम से जानते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप और हम कुछ नसीब हैं कि ऐसी हस्तियों से वाबस्ता हैं, और अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उनका फैजान उनकी नस्लों में भी आज जारी है। हजरत अशरफुल मशाइख ने जिस मेहनत से इस दरगाह अशरफिया की आबियारी करी और जिस मेहनत से यहाँ तामीरात फरमाई और फिर अपनी औलाद की तरबियत करी, उन्हीं खतूत पर जैसा हजरत कुतुब रब्बानी चाहते थे, उनके मिशन की तकमील के लिए अपने पीछे ऐसा जानशीन छोड़ गए कि उनका मिशन आज भी जारी है और इंशाल्लाह कयामत तक जारी रहेगा। उनकी अगली नस्लों में भी ये चीज़ मुंतकिल हो रही है। इस ख़ानदान में आपको हाफिज भी मिलेंगे, आमिल भी मिलेंगे, तारी भी मिलेंगे, नाथा भी मिलेंगे और रूहानियत में आला मकाम रखते हुए भी मिलेंगे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ये उनका फैजान है कि ये फैजान उनकी नस्लों में भी मुंतकिल हो रहा है, जिससे आप सब फैजियाब हो रहे हैं। यही नहीं कि सिर्फ कराची में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ वालिद मोहतरम ने मराकज़ कायम किए, ये फैजान जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। मेरी खुशनसीबी के काफ़ी अरसे के बाद मैं इस उर्स में शरीक हुआ। यकीनन मैं और आप कुतुब रब्बानी के फैजान से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। इंशाअल्लाह जब हम आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, रहमतें और बरकतें और रूहानियत यहाँ से लेकर उठेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इनके रूहानियत के समंदर में से चंद कतरे अता फरमा दे, ताकि हमारे दिल भी अल्लाह की याद में मशगूल हो जाएं और हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत हासिल कर सकें। वमा अलीना इल्लल बलाग।